लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया सह जिम्मेदारी के संकेत रूप में सभी तरीकों से धर्म सभा की जीवन शैली को बनाए रखे तथा पुरोहितों, धर्म बहनों और आम लोगों के बीच भागीदारी, एकता और मिशन को बढ़ावा दे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है रविवारीय आराधना विधि चिंतन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, हर समाज और संस्कृति में हम कुछ परंपराओं, नियमों और रीति रिवाजों, विधि विधानों को पाते हैं जिसके अनुष्ठान से व्यक्तियों को, चाहे वह नवजात हो, नव विवाहित हो या हमारे मृत जन हो, समाज में उन्हें विधिवत सम्मिलित करने की एक प्रक्रिया पूरी होती है जिसके द्वारा वे पूर्ण रूपेण सामाजिक जीवन का अंग बनते हैं। ख्रिस्तीय परंपरा के अनुसार यह बपतिस्मा संस्कार की धर्म विधि है जिसके द्वारा एक नवजात को हम कलीसिया के विश्वासी समुदाय में नाम देते हुए स्वागत करते हैं, जहां वह समस्त कलीसिया का अंग बनता और आधिकारिक रूप में अपने को ईश्वरीय संतान होने का गौरव हासिल करता है। आज माता कलीसिया यीशु ख्रिस्त के बपतिस्मा का त्योहार मनाती है, जहां हम उन्हें ईश्वर के पुत्र होने पर भी अपनी नम्रता में यर्दन नदी के तट पर पापियों की भीड़ में योहन बपतिस्ता के हाथों से बपतिस्मा ग्रहण करता पाते हैं। मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त को ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वे यहूदी समाज में निवास करते हुए समाज के नियमों, विधि विधानों की अवहेलना और तिरस्कार नहीं करते, बल्कि उन सारे विधि विधानों का सम्मान करते हुए उनके अनुरूप अपना जीवन संचालित करते हैं। आइए हम यीशु ख्रिस्त के बपतिस्मा आराधना विधि चिंतन हेतु लिए गए सुसमाचार का श्रवण करते हुए अपने में इस बात पर चिंतन करें कि बपतिस्मा लेने का अर्थ हमारे लिए क्या है। अपने इस ख्रिस्तीय बपतिस्मा के फलस्वरूप हमें क्या विशेष हासिल होता है? क्या हम अपने बपतिस्मा के दिन और उसमें मिली कृपाओं को अनुभव करते और उनके अनुरूप अपने जीवन को संचालित करते हैं?
जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और सब योहन के विषय में मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं यही तो मसीह नहीं है। इसलिए योहन ने सबों से कहा, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। सारी जनता को बपतिस्मा मिल जाने के बाद ईसा ने भी बपतिस्मा ग्रहण किया। इसे ग्रहण करने के अनंतर वह प्रार्थना कर ही रहे थे कि स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा कपोत जैसे शरीर के रूप में उन पर उतरा और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूँ।
श्रोताओं, सुसमाचार के सुमधुर वचन हमें बपतिस्मा के गूढ़ रहस्यों को समझने में मदद करे, जिससे हम अपने को ईश्वरीय संतान के रूप में देख और पहचान सकें, जो हमें अपने ख्रिस्त बुलाहट को उचित रूप में जीने को मदद करेगा। क्योंकि ईश्वर न केवल हमें अपने अनमोल जीवन से पोषित करते हैं, बल्कि वे हमारे जीवन के द्वारा दूसरों को अपनी आशीष और कृपा से भरना चाहते हैं, जैसे कि उन्होंने हमें स्वयं अपने बेटे यीशु ख्रिस्त को देते हुए किया। श्रोताओं, नबी इसाइयास के ग्रंथ से लिया गया आज का पहला पाठ हमारे लिए ईश्वर के आह्वान को व्यक्त करते हुए कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो, यरूशलेम को ढाढ़स बंधाओ। श्रोताओं, यह निश्चित रूप से हमें ईश्वर के द्वारा दी गई प्रेरिताई पर चिंतन करने का आह्वान करता है। नबी इसाइयास के इन वचनों का संदर्भ बेबीलोन निवास की ओर हमारा ध्यान इंगित कराता है, जहां ईश्वर की चुनी हुई प्रजा अपने को कठिनाई और विपत्ति की स्थिति में पाती है और ईश्वर से सांत्वना और बचाए जाने की गुहार करती है। श्रोताओं, बेबीलोन निवास का वह संदर्भ आज भी हमारे लिए सार गर्भित है, क्योंकि हमारे समाज की वर्तमान स्थिति भी कुछ वैसे ही जान पड़ती है और ऐसे स्थिति में ईश्वर हमें अपने लोगों की सुधि लेने को भेजते हैं। एक ख्रिस्तीय का जीवन स्वयं अपने लिए जीने का जीवन नहीं है, बल्कि यह हमें स्वयं से बाहर जाते हुए दूसरों के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की एक विशेष बुलाहट है। यह हमारे जीवन को दूसरों के संग साझा करने का एक अनमोल निमंत्रण है, जिससे दूसरे हमारे द्वारा बचाए जाएं और जीवन प्राप्त कर सकें। श्रोताओं, आज के पहले पाठ में हमारे लिए मार्ग तैयार करने, पहाड़ियों घाटियों को समतल करने की बात कही गई है। मानवीय जीवन के संदर्भ में पहाड़ियां, घाटियां और चट्टानों का तात्पर्य हमारे जीवन की कठोरता और मुश्किल परिस्थितियों का बोध कराती है। ये परिस्थितियां सबों के लिए सभी समय आती हैं और ऐसी परिस्थितियों में कुछ हैं जो अपने विश्वास और आस्था के कारण साहस के साथ अपने जीवन की नैया को आगे ले चलते हैं, तो वहीं ऐसे हैं जो अपने जीवन के मार्ग से विचलित होकर भटक जाते हैं। ईश्वर ऐसे लोगों के लिए हम सबों को भेजते हैं, जिससे हम उनके कठिन मार्गों को सुगम बना सकें। क्या हम ईश्वर से अपने को मिले इस उत्तरदायित्व का अनुभव करते और इसका निर्वाहन उचित रूप में करते हैं? क्या हम अपने जीवन की खुशी को सेवा, भलाई और सहायता स्वरूप दूसरे जरूरतमंदों के लिए बांटते हैं? तीतुस के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया आज का दूसरा पाठ हमारे मानवीय जीवन की बुलाहट को आगे समझने में प्रकाश डालता और कहता है कि ईश्वर की कृपा सभी मनुष्यों के लिए प्रकट हुई है, जो हमें शिक्षा देती है कि हम अधार्मिकता, विषय वासना का परित्याग कर संयम, न्याय और भक्ति का जीवन व्यतीत करें। श्रोताओं, अपने द्वारा बनाए गए मानव के रूप में ईश्वर ने हमें अपने असंख्य वरदानों से भर दिया है। वे हमें उन वरदानों को अपने जीवन को दूसरों के संग साझा करने, दूसरों के लिए अच्छा और नेक कार्य करने को प्रेरित करते हैं, लेकिन हम अपने इस जिम्मेदारी में असफल होते हैं, क्योंकि हम अपने को कई कमजोरियों और दुर्बलताओं से घिरा पाते हैं। वहीं दूसरा पाठ हमारी कमजोरियों के बावजूद हमें आगे ईश्वर में मिली मुक्ति का भी जिक्र करता है, जो ईश्वर की दयालुता में हमें प्राप्त हुई है। ईश्वर ने हमें नव जीवन जल और पवित्र आत्मा की संजीवन शक्ति द्वारा पापों से बचाया और पवित्र आत्मा में दूसरों की मुक्ति हेतु हमें अपने प्रेम का साधन बनाया है। अतः ख्रिस्तीय जीवन का सार मुक्तिदायी प्रेम का विस्तार करना है, जिसे हमने अपने जीवन में पाया और अनुभव किया है। निसंदेह हमें जीवन दिया गया है इसलिए कि हम इसे दूसरों के संग साझा कर सकें और दूसरों को ईश्वरीय प्रेम की अनुभूति दिला सकें। श्रोताओं, यर्दन नदी में यीशु के बपतिस्मा का रहस्य इसे हमारे लिए और भी ठोस रूप में व्यक्त करता है। यीशु का पापी मानव की पंक्ति में खड़ा होना, उनका जल से बपतिस्मा ग्रहण करना मानव के संग अपने स्वर्गीय पिता के अतुल्य प्रेम को सभी रूपों में साझा करने की बात व्यक्त करता है। यीशु अपनी नम्रता और दीनता में ऐसा करते हैं और उनके इस स्वभाव में हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अर्थात त्रित्वमय ईश्वर को मानव के लिए अपना संदेश प्रकट करते हुए सुनते हैं। तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। श्रोताओं, अपनी नम्रता में ईश्वर से मिले वरदानों को दूसरों के संग बांटने के द्वारा हम स्वयं ईश्वर के प्रिय पुत्र पुत्रियां बनते हैं, जिन पर वे अति प्रसन्न होते हैं। आइए हम पवित्र आत्मा से निवेदन करें कि वे हमें नम्रता के भाव से भर दें, जिससे हम दीनता में अपने को दूसरों के संग बांट सकें, जिन्हें हमारी छोटी सहायता की जरूरत है।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार को आशा के तीर्थयात्रियों का रोम शहर में स्वागत करने और उनका आलिंगन करने हेतु आशा पर पुनः एक नई धर्म शिक्षा माला की शुरुआत की। उन्होंने आशा के सभी तीर्थयात्रियों का, जो संत पापा पॉल षष्ठम सभागार में एकत्रित थे, अभिवादन करते हुए कहा कि आप में से बहुत से यहाँ रोम में आशा के तीर्थ यात्री स्वरूप हैं। आज की शनिवार सुबह से हम जयंती वर्ष आम दर्शन समारोह की शुरुआत कर रहे हैं। यह हमें तीर्थ यात्रियों का स्वागत करने और उन्हें गले लगाने का अवसर होगा, जो नई शुरुआत की चाह लिए विश्व के विभिन्न स्थानों से आ रहे हैं। इन शनिवारों को मैं समय समय पर आशा से संबंधित कुछ बातों पर प्रकाश डालूंगा। यह एक ई शास्त्रीय गुण है। लातीनी भाषा में गुण का अर्थ शक्ति है। यह शक्ति हमारे लिए ईश्वर से आती है। आशा इस भांति हमारे एक आदत नहीं या न ही व्यवहार है, जिसे हम अपने लिए रखते हैं या नहीं रखते हैं, लेकिन यह एक शक्ति है जिसकी मांग हम करते हैं। यही कारण है कि हम तीर्थ यात्रा करते हैं। हम यह उपहार मांगने आते हैं, जिससे हम पुनः अपनी जीवन की यात्रा शुरू कर सकें। संत पापा ने कहा कि हम यीशु के बपतिस्मा का पर्व मनाने वाले हैं और यह हमें आशा के महान नबी योहन बपतिस्ता के बारे में चिंतन करने का अवसर देता है। यीशु ने उनके बारे में कुछ अद्वितीय बातें कही कि नारियों में जन्मे वह सबसे महान है। यह हमें इस बात को समझने में मदद करती है कि क्यों लोगों की भीड़ उनके पास जमा होती थी। वे अपने में एक नई शुरुआत की लालसा करते थे। बपतिस्ता अपने में सचमुच विश्वसनीय और महान व्यक्तित्व को प्रस्तुत करते हैं। आज जब हम पवित्र द्वार में प्रवेश करते हैं, वैसे ही योहन यर्दन नदी पार करने का सुझाव देते हैं, जैसे प्रतिज्ञात देश में प्रवेश किया जा सके, जैसे कि जोशुआ ने पहली बार किया था। उन्होंने कहा कि यीशु यद्यपि अपने नेक वचनों के तुरंत बाद इस बात को जोड़ते हैं, जो हमें विचार करने के लिए प्रेरित करता है, मैं तुमसे कहता हूँ, नारियों में उत्पन्न योहन से महान कोई नहीं है, फिर भी ईश्वर के राज्य में जो सबसे छोटा है वह योहन से बड़ा है। जब यीशु इन वचनों को कहते हैं, योहन बपतिस्ता जेल में होते हैं, जहाँ हम बहुत सारे सवालों को पाते हैं। हम भी अपने तीर्थ यात्रा में बहुत से सवालों को लाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने बीच में बहुत से हेरोदों को पाते हैं, जो ईश्वर के राज्य का विरोध करते हैं। योहन बपतिस्ता से तब हम अपने में पुनः नई शुरुआत की बातें सीखते हैं। हमारे सामान्य निवास के लिए आशा, जो अत्यधिक दोहन के कारण घायल है। पूरी मानवता की आशा ईश्वर में निर्भर करती है। उनकी महानता अपने में अलग है। आइए हम ईश्वर की मूलता से अपने लिए फिर एक बार शुरू करें, जो हमारे लिए यीशु में व्यक्त किया जाता है। यह हमें सेवा, भ्रातृत्वमय प्रेम और अपने को सबसे छोटे रूप में देखने का आह्वान करता है। हम सबसे छोटों को देखें, उनकी सुने और उनकी आवाज बने। यह हमारी जयंती की नई शुरुआत होगी। अपने अंतिम अभिवादन में संत पापा फ्रांसिस ने शांति के लिए प्रार्थना जारी रखने की अपील की। और आज संत पापा फ्रांसिस ने ट्वीट कर सभी ख्रिस्तियों को नम्रता के मार्ग में यीशु का अनुकरण करने की प्रेरणा दी। संदेश में संत पापा ने लिखा, यीशु नम्रता के मार्ग से इस दुनिया में आए। वे एक रास्ता खोलते हैं, रास्ता दिखाते हैं और हमारे अंतिम लक्ष्य को प्रकट करते हैं। # क्रिसमस का मौसम। और संत पापा फ्रांसिस ने उन सभी परिवारों के प्रति अपनी निकटता व्यक्त की, जिन्होंने कैलिफोर्निया महानगर में आई त्रासदी के कारण नुकसान उठाया है। आज महाधर्माध्यक्ष गोमेज को संबोधित एक टेलीग्राम में संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि वह हाल के दिनों में लॉस एंजिल्स काउंटी में हुई हिंसक आग से हुई जान माल की हानि और तबाही से दुखित है। संत पापा ने इस त्रासदी से प्रभावित समुदायों के लिए आध्यात्मिक निकटता का आश्वासन दिया है। वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पिएत्रो पारोलिन द्वारा हस्ताक्षरित अपने संदेश में संत पापा ने मृतकों की आत्माओं को सर्वशक्तिमान ईश्वर की दया पर सौंपते हुए उनके निधन पर शोक करने वालों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की है। संत पापा ने आपातकालीन सेवा कर्मियों के बचाव प्रयासों के लिए भी प्रार्थना करने का आश्वासन दिया। मंगलवार को सांता आन्ना की तेज हवाओं के कारण आग लगना शुरू हो गई। गुरुवार को यह कम हो गई, लेकिन मौसम पूर्वानुमानकर्ता चेतावनी दे रहे हैं कि इस सप्ताहांत के बाद फिर से भड़क सकती है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार लॉस एंजिल्स काउंटी में कम 6 बड़ी आग लगी है। महानगर में लगी आग की स्थिति पर अधिकारियों की ओर से दी गई नवीनतम जानकारी के अनुसार 11 लोगों की मौत हो गई है। 1,00,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया गया है तथा हजारों लोग हाई अलर्ट पर हैं। हाल के दिनों में सोशल नेटवर्क पर प्रसारित हो रही तस्वीरों में हॉलीवुड अभिनेताओं और मशहूर हस्तियों के घर भी आग से तबाह होते दिखाई दे रहे हैं। उधर चीनी कैथलिकों ने तिब्बत भूकंप पीड़ितों की सहायता के लिए 60,000 यूरो से अधिक राशि जुटाई। चीन के सभी कैथलिक समुदाय मंगलवार को आए घातक भूकंप के बाद तिब्बत में अपने घरों से विस्थापित 50,000 से अधिक लोगों की मदद के लिए दान एकत्रित करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। चीनी भूकंप नेटवर्क केंद्र ने दर्ज किया है कि 7 जनवरी को हिमालय क्षेत्र में 100 वर्षों में आए सबसे भयंकर भूकंपों में से एक कहे जाने वाले तिब्बत क्षेत्र के डिंगरी काउंटी और शिगात्से क्षेत्र में आए भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई थी। इस भूकंप में 120 से अधिक लोग मारे गए और 330 से अधिक लोग घायल हुए हैं। लगभग 50,000 लोग विस्थापित हुए और हजारों घर नष्ट हो गए या क्षतिग्रस्त हो गए। भारत और नेपाल में निर्वासित जीवन जी रहे सैकड़ों तिब्बतियों ने अपनी जान गंवाने वालों के लिए मोमबत्ती जलाकर अपना समर्थन दिखाया। 9 जनवरी को राजनयिक कोर को दिए गए अपने भाषण के दौरान संत पापा फ्रांसिस ने पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना और प्रार्थनाएं व्यक्त की। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।